विष्णु ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी सुनो सुनो। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
ओम शांति। वैसे शरीर का नाम कैलाश है, बाबा मम्मा कैलाश पहाड़ी बोलते थे और यही हॉल था जिसमें बाबा मम्मा हम सभी बच्चों को मिलते थे। वैसे मम्मा बाबा की दोनों की ही पालना मिली। मैं ज्ञान में 58 में आई, अभी 50 साल पूरे हुए। वैसे हम लौकिक में तो हिमाचल प्रदेश शिमला साइड की हूँ। शुरू में जब ज्ञान में आई तो मेरे को हिंदी भाषा मालूम नहीं पड़ती थी, हम हमारी पहाड़ी भाषा ही जानती थी। और स्कूल में भी मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। और जब यज्ञ में आए, सेंटर पर भी रहने लगे तो हमारे से कई लोग, मैं बोलती नहीं थी, बोलना तो मैंने अहमदाबाद में शुरू किया वैसे, लेकिन कभी मानो 7-8 दिन में कभी कोई बोलना पड़े तो, बाकी बोलने का नहीं। तो वैसे जब हम सेंटर पर आई रहने के लिए तो कभी कभी कई लोग ऐसा पूछते थे कि बहन या बेटा आप कितनी पढ़ी हुई हो, तो उस समय मेरे को इतना खराब लग जाता था कि सबको पता है ना मैं नहीं पढ़ी हूँ तो क्यों पूछ रहे हैं। पर वास्तव में तो किसी को पता ही नहीं होता कि पढ़ी हुई है या नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहती थी कि मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ और फिर चली जाती थी। तो अम्बाला में जो कृष्णा दीदी है, मेरे को ड्रामानुसार उनके साथ रहने का मिला। तो कई बार उन्होंने देखा था कि जब कोई पूछे तो मुझे बहुत दुख होता होगा, तो उसने ऐसा शुभ भावनाओं से संकल्प किया कि हम इसको पढ़ाएंगे। तो उनको ऐसा था कि वे स्कूल में भले नहीं गई है पर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने आता होगा, तो उन्होंने ना मेरे को लिख करके दिया और बोला जाओ याद करके आओ। तो याद क्या करूं, छत पर भेजा था, छत पर बैठी रही और बाबा को याद करती रही, बाबा को बोलती रही बाबा आपने मुझे ज्ञान ही क्यों दिया, और ज्ञान देना था अपना बनाना था तो पढ़ाया क्यों नहीं। ऐसे में पता नहीं कितना समय निकल गया और मेरा जो काम होता था समझो कपड़े धोना या सब्जी बनाना या रोटी बनाना, वो सब दीदी ने किया। एक घंटा लगभग हो चुका था तो दीदी ने नीचे बुलाया, कैलाश नीचे आओ। नीचे आई दीदी, बोली के याद किया तो क्या किया, कुछ नहीं। तो क्यों नहीं याद किया, तो दीदी ये पता ही नहीं है क्या है। तो दीदी को बहुत खराब लगा और वो थोड़ा मन नाराज तो कौन नहीं होगा। फिर तो दीदी ने मना काफी अच्छी तरह समझाया कि तेरे को आता ही नहीं था कुछ, तो बोलती तो सही। पर मेरा स्वभाव ही नहीं था बोलने का, लेकिन ऐसे ऐसे में उस बाबा ने पहले एक दो साल हिमाचल में रही, फिर 60 में मैं पंजाब में आई, पंजाब में भी 3-4 साल रही। और जब पहली बार हम घर से बाबा को मिलने आए थे तो बाबा मामा दोनों ही मिले थे, और बहुत अच्छी तरह से बाबा ने हमारे को बुलाया और बात करने लगे, लेकिन मैं बाबा जो भी बोलते हैं हिंदी में मैं पहाड़ी में उत्तर देती थी, तो बाबा ने नाम ही पहाड़ी बच्ची रखा। फिर वहाँ की जो बहने थी उसने भी बोला कि कैलाश बाबा को आप गीत गा के सुनाओ, पहाड़ी गीत सुनाओ या पंजाबी सुनाओ। तो फिर बोलते थे तो मैं गाती भी थी, लेकिन फिर जब वापस भेजा तो हमने खास मना, जब सेंटर पर रहने के लिए आई, जब दूसरी बार बाबा के पास आई तो मम्मा भी यही थी, तो मम्मा वैसे बॉम्बे जा रही थी, मम्मा के साथ भी अच्छी तरह बातचीत की। वैसे हमारा बचपन में मम्मा से बहुत प्यार था, कभी भी कोई भी मुश्किलात आवे तो मैं बोलती नहीं थी, लेकिन लिखना भी नहीं आता था, पर कोई ना कोई बहन को बोलूंगी कि मेरे को चिट्ठी लिख दो ना, फिर लिखाते थे। शुरू शुरू में हमारी जो सेंटर के भाई बहन थे उनको भी ऐसे होता था कि कैलाश बोलती नहीं है, उसको कुछ काम करने आता नहीं है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो सेंटर पर क्या करेंगी। तो उन लोगों ने फाइनल ऐसे किया कि तू आती है लेकिन कुछ तेरे को आता नहीं है, इससे तो तू शादी कर लो तो अच्छा है। तो ये बोल जब बोले तो भी मुझे खराब लगता था। कई बार हमारे परिवार वाले, घर वाले भी सब लोग बोलते थे कि क्या करेंगी आप, तो मैंने कई लोग तो सीधा सीधा भी बोल देते हैं कि वे पढ़ी लिखी नहीं है, और ये बात तो चलते फिरते मेरे को कोई ना कोई बोलता ही था और इतना दुख होता था। पर फिर भी बाबा ने बहुत मदद की, हमने जब हमारे को सेंटर की बहनों ने भाइयों ने भी बोला कि कैलाश तेरे को पढ़ना आता नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तू मना बोलती भी नहीं है, तो तू मना भले ज्ञान में आना लेकिन तेरे को सेंटर पर नहीं रखेंगे, और तेरे को शादी करनी है तो कर लो, क्या करेंगी सेंटर पर आकर के। तो मेरे को ना फिर बहुत दुख हुआ, क्लास पूरा करके हम तो आकर के नदी के किनारे पर बैठ गए, व्यास नदी थी, तो भाइयों ने और हमारी माँ ने बोला कि चलो घर पे, मैंने कहा नहीं आज यहाँ ही योग करना है। 11 बजे फिर भाई बुलाने आए, कैलाश चलो घर, फिर चली गई। बाबा को मम्मा को बोलूं, बाबा मेरे को क्या, मेरे से क्या कराना है आपको और मेरा क्या भविष्य है। ऐसे फिर घर पे जाने के बाद बोला चलो खाना खाए, नहीं खाना है। फिर तो कि कोई बहन आई हमारे घर पे, तो उसको बोला कि आप है ना मधुबन, मम्मा को लेटर लिख दो। तो बोला भले क्या लिखती हो, लिखाओ। तो हमने लिख दिया सच सच कि मेरे घर वाले भी कहते हैं शादी कर लो और ज्ञान को छोड़ दो, तुम ज्ञान में नहीं चल सकेंगी, और मेरे सेंटर वाले भी कहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसी इच्छा है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं और बाबा मम्मा आपकी ही सेवा करूं, लेकिन मुझे मेरे पर किसी को विश्वास नहीं है, और मेरा नाम कैलाश है, मेरी इतनी उम्र है, मैं हिमाचल में रहती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। मैंने पूरा अपना परिचय मम्मा बाबा को लिख दिया। फिर मम्मा का लेटर आया, मम्मा ने लिखा कि बच्ची तेरा लक्ष्य है ना ब्रह्मा कुमारी बनने का, तो तू चिंता नहीं कर, और तेरी विजय तेरे परछाई बन करके तेरे साथ साथ दौड़ रही है, लेकिन बच्ची तुम योग करो। बस ये लेटर जब हमने वो बहन से सुना, हमारे को तो इतनी खुशी कि बात नहीं पूछो। बस जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, मेरे को सब प्राप्तियाँ हो चुकी है, इतनी खुशी हो गई। लेकिन क्या, लेटर तो सेंटर पर ही आते थे, तो दीदी कहीं जा रही थी, जल्दी जल्दी उसने सुनाया और चली गई। 15 दिन के बाद जब दीदी वापस आई तो मैं बहुत खुश। तो दीदी ने बोला, कैलाश बहन बहुत खुश हो? मैंने कहा, दीदी मेरे को तो मम्मा का लेटर आया है, मम्मा ने ऐसे ऐसे लिखा है। बोला, तेरे को खुश करने के लिए लिखा है, और कोई तो ब्रह्मा कुमारी बनने वाली नहीं है। तो और अगर बनेंगी ना तो 2-4 महीने के बाद फिर घर ही जाएंगी वापस, इससे पहले से घर रहो तो अच्छा है। तो मेरे को और दुख हुआ और फील होने लगा। फिर मम्मा को लेटर लिखा कि मेरे को ऐसा ऐसा बोलते हैं, मम्मा मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी बातों का ध्यान रखूं जो मैं जिंदगी भर ब्रह्मा कुमारी बन करके सेवा करूं। तो मम्मा ने वो भी बहुत अच्छा लेटर लिखा था। मम्मा ने 3-4 बातें लिखी थी। मम्मा ने एक तो ये लिखा कि बच्ची, जब आप अपना घर छोड़ करके बाबा के घर आओ तो ये सोच करके आना कि इस घर के बाहर मेरा और दुनिया में कोई घर नहीं है। दूसरा मम्मा ने ये लिखा था कि बच्ची, जब मन बाबा के घर आएंगी तो जरूरी नहीं है कि तेरे को एक ही उसी स्थान पर रखेंगे, तेरे को बाबा कहाँ भी किसी भी स्थान के स्थान पर भेज सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ रख सकता है, तो रहेंगी। हाँ, फिर दूसरा तीसरी मम्मा ने ये बात लिखी थी कि जब मन बाबा के घर पे आ जाओ तो ये सोचना कि मैं जीती जी इस बाबा के घर में आई हूँ, इस घर से मेरी अर्थी निकलेंगी, उससे पहले नहीं। तो वो भी अच्छा था। चौथी बात मम्मा ने ये लिखी थी कि बच्ची, कभी भी एक घर की बात दूसरे घर नहीं करना, और जिस भी स्थान पर तेरे को रखेंगे तो जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसा स्थान होगा। जैसे स्थान अलग होता है, हरेक के नियम, हरेक के रवाज, हरेक के सिस्टम अपने अपने होते हैं। तो मम्मा ने बोला कि ऐसे नहीं, पहले मैं माना चलो जयपुर में थी तो फिर मैं अहमदाबाद में आई तो मैं बोलूंगी जयपुर में मुझे इतना अच्छा रखते थे और यहाँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं रखते हैं, या अहमदाबाद से मैं गांधीनगर आई तो वहाँ मैं कितनी खुश थी और गांधीनगर वाले अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो उन लोगों को कितना खराब लगेगा। तो ऐसे नहीं बोलने का, भले। तो ये जो मम्मा ने बातें सारी लिखी वो मेरे को बहुत अच्छी तरह, लेटर भी मेरे पास ही ले लिया और सब मना सब कुछ बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके अपना निर्णय लिया कि अब हमारे को जाना है। तो वैसे तो उस समय भी मैं काफी छोटी थी, लेकिन हमारे लौकिक पिताजी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लगभग 6 फुट उसकी हाइट थी और बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जैसे ही हमने बोला कि मुझे सेंटर पर जाना है तो उन्होंने बोला, कैलाश बहन आओ बैठो। हम पिताजी से सख्त डरते थे वैसे, तो मैं ऐसे खड़ी रही सामने। तो उन्होंने बोला कि देखो, सोच समझ करके घर से बाहर पांव रखना। पिताजी को बोला, जी पिताजी मैंने सोच समझ लिया है। तो थोड़ा पिताजी को मना ऐसा भी लगता था कि कितनी ये छोटी है और बुद्धि यानी इसमें पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर बोलती है मैंने सोच समझ लिया है। तो फिर पिताजी ने बोला कि देखो, वैसे ये घर तेरे लिए सदा के लिए खुला है, लेकिन मेरा नाम खराब करके आई तो तेरे को तो क्या, परंतु तेरी लाश को भी अंदर नहीं आने दूंगा। मैंने कहा जी पिताजी। तो बोला देखो लौकिक का लौकिक परलौकिक तीनों बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ जी। फिर तो पिताजी ने खुशी से छुट्टी दी थी। पहले थोड़े बंधन आए थे, लेकिन फिर तो बाबा मम्मा की काफी मदद रही और पंजाब में भी हम 3-4 साल रहे। वहाँ से फिर जब बाबा को मिलने मधुबन आए थे तो मधुबन में बाबा को मिले और जब बाहर निकल रहे थे, मतलब परिचय देते थे, तो जब परिचय इसी क्लास में यही थे बैठे हुए बाबा के रूम में, तो बाबा ने सारा पूछा तो बताया कि ये कैलाश है, ये है, ये है, सब बहनों कुमारियों का परिचय मिला। मेरा भी दिया कि ये कैलाश है और बाबा अनपढ़ है, बहुत भोली है और सेवा अच्छी करती है, फिर बोला ध्यान में भी जाती है। तो बोला ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो कहे हाँ बाबा। तो कहे ध्यान में जाती है बच्ची? तो दीदी ने बोला हाँ जी बाबा। तो फिर जब दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर निकलना, तब बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, कल 10:30 बजे बाबा को झोपड़ी में मिलने के लिए आना, अकेले आना, मना अपनी दीदी से पूछ करके नहीं, मीन्स नहीं तो कोई ना कोई को भेजेंगे, तो बच्ची तू अकेले आना। भले मेरे को याद रहा 10:30 बजे बोला है। दूसरे दिन जब हमारा क्लास पूरा हुआ तो बातें जिते करते हम लोग किचन में पहुंचे, नाश्ता किया, फिर किसी न किसी से मिलते मिलते रूम पर पहुंचे। तो रूम पर जब पहुंचे तो मुझे याद था कि मुझे 10:30 बजे बाबा को मिलने जाना है। तो जब मना हम दीदियां तो काम बा, इतना काम होता है, हिसाब ये वो, तो मैं बैठी रहती थी। मेरा एक ऐसा स्वभाव खराब था कि जब तक कोई काम ना बतावे तब तक मुझे कुछ नहीं करने का, बिल्कुल पूछने का ही नहीं कि दीदी कुछ काम करूं या कुछ नहीं। और दीदी अगर बोल देवे कि सुबह 3:30 बजे उठ करके रात्रि को 10:30 बजे तक इतने इतने काम करने हैं, तो वो एक के बाद करती रहूंगी। लेकिन अगर नहीं बोला, भूल करके रह गया, तो हम शांति। तो ऐसे दीदी के पास बैठी हुई थी, दीदी कुछ लिख रही थी, बाबा को देने का था कुछ हिसाब। और फिर काम करते करते दीदी ने देखा, अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी अभी तक? मैंने कहा जी। तो बोला तुम जाओ सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके और धुलाई कर दो। मैं क्या भले, लगभग 10:15 बजे का टाइम था और मैं तो सब कपड़े इकट्ठे किए, उसमें 10:30 बजे होंगे। और फिर मैं धोने गई तो मेरे को था ना कि बाबा के पास जाना, तो मैं ना फटाफट वो धोखा लगा करके कपड़े धुलाई करके बाहर जब लाई तो देखा तो यहाँ से वो ट्रेन के कपड़े थे ना, और उस समय तो रिजर्वेशन नहीं होती थी, ऐसे ही जाते थे रिजर्वेशन जनरल डब्बे में, तो बहुत गंदे गंदे कपड़े थे यहाँ से। तो ये जो अपने शांति स्तंभ के पीछे नहीं, ये कॉर्नर पर अभी भी नल है, तो वो नल पर मैं डोल रख करके और साबुन लगा के फटाफट ऐसे से घस रही थी। और लगभग 11:30-12 होने वाले थे, तो मैं बस ये टेंशन में थी कि बस 10:30 बाबा के पास जाना, 10:30 बजे बाबा के पास जाना है। मेरे को ये पता नहीं था कि 10:30 कब बजते हैं, घड़ी देखने नहीं आती थी मुझे। लेकिन 10:30 जाना वो पता था, तो मना वो दो रही थी तो मन बाबा ने काफी इंतजार किया होगा, परंतु नहीं आई। तो हमारे संतरी दादी और बड़ी दीदी और ईशु दीदी, ऐसे मना कुछ कुछ दीदियां दादियां संदेशी दादी, ये सब बाबा के साथ आ रही थी। यही रास्ते से ऐसे, ये तो जगह कच्ची थी उस समय, शांति स्तंभ वगैरह ये कुछ भी नहीं था। तो बाबा और सब बहने आ रही थी, तो किसी ने बोला होगा कि बाबा कैलाश तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला होगा कि बच्ची अभी आवाज नहीं करना। तो बाबा तो खुड़ाऊ पहनते थे वैसे, लेकिन उसकी आवाज नहीं होती थी। तो बाबा हमारे पास आ गए और मैंने तो नल खुला रखा और घस रही हूँ, जल्दी जाना है बाबा के पास। तो बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी। जब आंखें बंद की तो मेरे को तो जल्दी बाबा के पास पहुँचने का था ना, तो हमने सोचा भाई कोई हमारे साथ की जो बहने उन्होंने बंद की होंगी। तो मैं बोलूँ राजकुमारी बहन है, शुक्ला दीदी है, कुशलता दीदी है, ये वो सब के नाम लूँ, लेकिन कोई आंखें ही नहीं खोले। और मैं तो बरोबर परेशान हो गई और बड़ी परेशान होकर के मैं ऐसे बोल गई कि आखिर भी है कौन बाबा। तो क्या था, बाबा ने जब मैं ऐसे ऐसे वो साबुन वाले हाथ थे और ऐसे ऐसे घस रही थी ना, तो ऐसे झुक करके नल के पास थी। तो बाबा ने जब आंखें बंद की तो मेरे को अपने साथ लगा लिया, तो नल तक तो हाथ पहुंचे ही नहीं और साबुन वाले हाथ से कैसे पकड़ू। नहीं तो बाबा का तो इतना पोचा पोचा होता था जो पता चल जावे। तो जब ऐसे कंताल करके बोली कि आखिर भी है कौन बाबा, तो बाबा ने आंखें खोली और बोला, अरे बच्ची सब देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। फिर तो मना बाबा ने हाथ धुलाई कराए, अपने रुमाल से पोछे और फिर बाबा ले जा रहे थे झोपड़ी में। यहाँ पर बाबा आए ना पिछली साइड, तो बाबा बोले, अच्छा बच्ची आप सुनाओ कि आप कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी। बाबा को बोला, बाबा बस मैं आपके पास ही 10:30 बजे आपके पास आने वाली थी। तो बाबा ने बोला, बच्ची 10:30 तो बज चुके हैं और अभी तो 11:30-12 बज गए। तो हमने बोला, हाँ तो बाबा मैं 10:30 बजे आने वाली थी। तो बाबा खूब जोर से हंसे और मन बड़ी दीदी ने बोला, अरे बुद्धू। फिर ऐसे करके तो बाबा ने बोला, बच्ची पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30 होते हैं। फिर मैं चुप रही। फिर तो बाबा ले गए झोपड़ी में, वहाँ बिठाया। फिर बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची कल तेरी टीचर कह रही थी कि तुम बाबा के पास जाती हो, ध्यान में जाती हो बच्ची। तो बच्ची आज बाबा के पास जाके आओ और मेरी भी याद देना बाबा को, और देख के आओ बच्ची कि मेरे में और ऊपर जो तुम ध्यान में बाबा को देखती हो ना बच्ची, उसमें क्या फर्क है वो बताना। फिर बाबा और सब बहने बैठी, दादियां दीदियां, और दृष्टि देते रहे। तो दृष्टि देते देते बाबा ने बोला, चलो बच्ची चलो। ऐसे ना दृष्टि दी और फिर बाबा ने ऊपर भेजा। फिर जब वापस नीचे आई तो बाबा ने बोला, बच्ची बाबा को देखा, बाबा को बाबा की याद दी। तो बच्ची बाबा को मिली थी, ऐसे में सीरियल आती थी, बोलना बहुत कम था वैसे। तो फिर बाबा को तो सुनने का था कि बाबा कैसे थे ऊपर। तो बाबा ने फिर पूछा कि बच्ची बाबा को मिली जी। तो बच्ची ऊपर में बाबा कैसे थे। तो मेरे को तो हिंदी भाषा नहीं आती थी, दूसरा अनपढ़ थी, तीसरा एक गामड़े की थी, तो बोलने का ढंग भी नहीं आता था। तो बाबा को बोल दिया कि बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो जब ऐसे बोला तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं बाबा को बोला बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो दीदी ने बोला अरे मुठी क्या बोलती हो। तो फिर बाबा ने बोला कि नहीं दीदी देखो संतरी बच्ची भी मेरे पास है ये भी जन्म में जाती है पूछ सकते हैं बाबा लेकिन इस बच्ची को बाबा ने जानबूझ करके भेजा है बच्ची जो देखा ना सुनाने दो कोई अर्जा नहीं। फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा ने ऊपर पैंट शर्ट पहना था तो फिर बच्ची कैसे अच्छे थे क्या पहना था ऊपर बाबा ने कैसे कपड़े पहने थे। बाबा को बाबा बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो बच्ची तू तो कहती है बहुत अच्छे थे बाबा तो कैसे अच्छे थे। बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा ने माना कपड़े तो आप ही जैसे पहने थे लेकिन उससे प्रकाश प्रकाश निकलता था आपके अंदर से प्रकाश नहीं निकल रहा है। फिर बाबा मुस्कुराने लगे और बाबा ने बोला अच्छा बच्ची पता है ऊपर वाले बाबा से क्यों प्रकाश निकल रहा था। ना नहीं पता है। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो उसका लक्ष्य होता है ना और वो जो लक्ष्य होता है वो संपूर्ण होता है। तो ये बाबा भी पुरुषार्थी है बच्ची स्टूडेंट है तो बाबा की फाइनल स्टेज ऊपर में है। तो बच्ची बाबा की जो फाइनल स्टेज है ना उससे प्रकाश प्रकाश निकल रहा है बाबा भी पुरुषार्थ करके ऐसे बन जाएंगे। बाबा भी तो पुरुषार्थी है ना बच्ची है नहीं है करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे तो मुझे कोई मालूम ही नहीं था कोई संबंध ही नहीं था जैसे। फिर ऐसे कह करके बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है ट्रांस में जाने का तो बच्ची तू पंजाब में क्यों रहती हो। तो बाबा को बोला बाबा तो बाबा ने बोला बच्ची बाबा जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। बाबा को बोला जी बाबा जरूर रहूंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची जहाँ बाबा भेजेंगे वहाँ जाएंगे। बाबा को बोला जी बाबा लेकिन बाबा मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊंगी। मेरे को मना किया था दीदी ने कि तेरे को कहीं भी बाबा भेजे तो तू वापस यहीं आना और मुझे भी ऐसा था कि मैं जहाँ से आई हूँ वहीं जाऊँ क्योंकि उन लोगों को पता है मैं अनपढ़ हूँ या कैसी हूँ और कहीं मुझे भेजेंगे और कोई बोले मुरली सुनाओ और मैं बोलूंगी मैं पढ़ी हुई नहीं इसलिए मैं भी अंदर से चाहती थी वहीं जाने का। लेकिन फिर भी मुझे जब बाबा ने बोला तो मुझे ऐसा हुआ कि भले जहाँ बाबा भेजेंगे वहाँ जाऊंगी पर बड़ी दीदी से पूछ के जाऊंगी। तो मैंने बोल दिया बाबा को बाबा मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ के जाऊंगी। बाबा ने बोला अच्छा बच्ची बाबा से बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन। तो मैं तो समझी नहीं और मैंने बोला बाबा पंजाब में है। फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्ची तेरे बड़े बहन जी से बाबा पूछ लेंगे फिर तो निश्चिंत ना बच्ची। बाबा को बोला जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगी ना। बाबा को बोला कि बाबा जहाँ रखेंगे वहाँ रहूंगी लेकिन मुझे घर के नजदीक नहीं रखना घर से दूर रखना। तो फिर बाबा ने बोला ठीक है बच्ची लेकिन बाबा तो तेरे को हिमाचल में ही रखना चाहते थे क्योंकि तेरी पहाड़ी भाषा है। बाबा को बोला बाबा जैसे आप ठीक समझो। बाबा ने बोला बच्ची क्यों घर के नजदीक रहना नहीं चाहती हूँ। बाबा को बोला बाबा मेरे भाई में और माँ में बहुत मोह है इसलिए वो भी घड़ी घड़ी बुलाते हैं मैं घड़ी घड़ी घर जाती हूँ वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है और बुलावे नहीं जावे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है इसलिए दूर रखेंगे ना तो बाबा अच्छा रहेगा। बाबा ने बोला अच्छा बच्ची तेरे को बाबा जयपुर भेजता है, जयपुर में म्यूजियम बन रहा है और बहुत सेवा है। तो बच्ची वैसे भी वहाँ जो बच्ची थी भोग लगाती थी वो अभी दिल्ली गई और तुम अभी वहाँ के बच्चे योग लगा के भोग खा लेते हैं, तुम जाकर के बाबा को भोग खिलाना। भले फिर बाबा ने मेरे को जयपुर भेजा और जयपुर में मैं लगभग 7-8 महीने रही। फिर बाबा ने वापस बुलाया कि अच्छा लगता है बच्ची जयपुर में, तेरे को रखा है तो अच्छा लगता है। बाबा को बोला जी बाबा, खुश हो जी बाबा। तो बाबा ने फिर पूछा कि अच्छा बच्ची तू इतनी सुखी थी, इतनी अच्छी थी, इतने सब लोग तेरे को प्यार करते थे, फिर बच्ची तुम ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? तो बाबा को बोला बाबा मुझे तो दीदी बहुत अच्छी लगी। तो बोला और आपकी मुरली अच्छी लगी? तो बाबा ने बोला रोज मुरली पढ़ती हो? क्यों नहीं पढ़ती हो बच्ची, अच्छी लगती तो पढ़नी चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ी? बाबा को बोला बाबा मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने ना तुरंत ऐसे देखा, बाबा ने बोला अरे बच्ची तेरे को तो बहुत पढ़ना था, तू क्यों नहीं पढ़ी? तो मैं पोपट जैसी थी, क्योंकि नहीं सब मुरलियों में ऐसा बोलते हैं ना कि भाई अच्छा तो कुछ भी हो जाता है, भाई नहीं चिंता नहीं करो, जो होना था ड्रामा में हो गया। तो ये ड्रामा घड़ी घड़ी सब बोलते हैं। तो मैं भी बाबा को बोल दिया कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी इसलिए नहीं पढ़ी। तो बाबा को हंसे और बाबा ने बोला अरे बच्ची बाबा का दिया हुआ ज्ञान बाबा को ही सुना रही हो। फिर चुप हो गई। तो बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची एक तो बहुत पढ़ना था और दूसरा बच्ची तू पढ़ी लिखी होती ना तो विदेश सेवा करती। तो उस जमाने में विदेश क्या और देश क्या ये भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय ये विदेश के लोग कोई आते ही नहीं थे, सिर्फ एक जयंती बहन और ज्योति बहन जो थी वो यहाँ हॉस्टल में पढ़ते थे, उन लोगों का पता। लेकिन वो विदेश में कौन से, जैसे यहाँ से बॉम्बे रहते हैं या कोई दिल्ली रहते हैं, ऐसे विदेश में ऐसा कुछ होगा जयपुर जैसे या कुछ भी, विदेश कोई अलग दुनिया है वो हमारे को नहीं मालूम था। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बहुत जल्दी मर जाएंगी। तो बाबा को मैंने पूछ लिया कि बाबा मैं कैसे मरूंगी? मेरे को ना बीमार पड़ने का बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। तो बाबा को बोला बाबा कैसे मरूंगी? बाबा ने बोला नहीं बच्ची ऐसे काम करते करते सौ ईयर मर जाएंगी। तो मेरे से ऐसा बोला गया कि बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो जब ये बोल बोला ना तो बाबा तो बड़े थे और मेरे तो एकदम इतनी समझ नहीं, मरना खराब चीज है ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैं तो खुशी खुशी से मरना चाहती थी, क्योंकि मैं मरूंगी तो बाबा ने भी पूछा कि बच्ची मरना क्यों चाहती हो? तो मैंने बाबा को यही बोला कि बाबा मैं मरूंगी ना तो दूसरा जन्म लेके मैं बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला बस बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। तो फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहुत लोगों ने पढ़ने के लिए कहा लेकिन मुझे शर्म आती है, तो नहीं जैसे कोई कहो बोल तो मैं भी कहो बोलूं, फिर कहो बोल तो कहो बोलूं, ऐसे वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं और याद भी नहीं रहता था, इसलिए मैं मना करती थी। बाबा को भी मना किया, बाबा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे को पढ़ने के लिए तो मरना ही है। तो फिर बाबा ने कहा नहीं अरे बच्ची देखो बाबा को वैसे हिंदी भी आती है, लेकिन सिंधी जो है ना बच्चे, वो बहुत बोलना मुश्किल होती है पर पढ़ना बहुत इजी है। बच्ची शाम को 4-5 बजे आना बाबा की ऑफिस में, उस समय बाबा लेटर सुनते थे वैसे शाम को 5 बजे के करीब। तो मैं गई शाम को बाबा की ऑफिस में, और बाबा भी काफी दीदियां दादियां बाबा के पास थी। बाबा ने कागज पेन लेकर के लिखना शुरू किया, और फिर एक डेढ़ लाइन बाकी थी, और उतने में रुक्मणी दादी का फोन आया, और दादी ने बाबा को बोला, बाबा कैलाश पहाड़ी को जल्दी भेजो, यहाँ बहुत पार्टी आ रही है और हैंड्स कम हैं, आप कैलाश को जल्दी से जल्दी भेज दो। तो बाबा ने बोला कि ठीक है बच्ची। तो बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को तो जयपुर बुला रहे हैं। तो बाबा को बोला, बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना मेरे नसीबों में नहीं है, मुझ ड्रामा में नींद नहीं है। ऐसे कह करके ना मैं खूब रोई। फिर बाबा की बच्ची चुप। तो मैं उतना पता नहीं क्या, मेरे को ज्यादा से ज्यादा रोना आवे। बड़ी मुश्किलों से बाबा ने शांत किया, और फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची तुम जयपुर जाओ, और लेकिन तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है वो सुनाई। हम लोग दो बहने थी, हम लगभग 35-40 भाई बहन थे, म्यूजियम बन रहा था, तो इतने लोगों का खाना बनाना, नाश्ता, कपड़ा, बर्तन, टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर बहनों ने बोला कि, बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची सारा दिन तो टाइम नहीं है, लेकिन रात्रि को जब सब सो जावे ना, तब तू कॉपी पेन लेकर के बैठना, और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो मैं बहुत मुंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोल रहा है, शिव बाबा तो गोल गोल है और वो भी ऊपर रहता है, तो वो मुझे कैसे पढ़ाएगा। तो फिर मेरा रंग रूप थोड़ा चेंज हो गया होगा। तो बाबा ने बोला, बच्ची निश्चय है बाबा में? बाबा को बोला, बाबा निश्चय तो है, निश्चय तभी तो यहाँ। तो बाबा ने बोला, बाबा जो बोल रहे हैं ना, उन पर भी निश्चय रखो। जी बाबा। फिर बाबा ने जयपुर भेजा, और जब भेज रहे थे तो बाबा ने बोला, बच्ची जब पढ़ने बैठो ना तो किसी को सुनाना नहीं तो बच्ची तेरे को कोई बैठने ही नहीं देगा शांति से, कोई आएगा जाएगा उठाएगा बुलाएगा ये वो, तो फिर जो तेरे को प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए एकांत में और अकेले ही बैठना पहले। फिर तो जैसे बाबा ने बोला था वैसे सारा दिन तो बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया, शाम जैसे जैसे पढ़ने लगी वैसे वैसे चिंता होने लगी। और फिर आनंद किशोर दादा थे, उनसे कागज पेन मांगा, तो दादा ने कॉपी तो दी, लेकिन दादा के पास पेन थी स्याही वाली बहुत अच्छी। तो दादा ने बोला, मुठी तेरे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तू क्या करेंगी कॉपी पेन। फिर बलदेव भाई से पेंसिल दिलाई और ले ली। जब सब लोग सो गए तो फिर उठ करके बैठी दीदी की ऑफिस में, और काफी समय तक तो योग करते रहे, लेकिन योग करते करते फिर बाबा ने ऊपर बुलाया। मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज बाबा के पास 10-15 मिनट रहती होंगी। ट्रांस में ही बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया था, बाकी कोई स्कूल में नहीं गई हूँ। मरने के लिए भी बाबा ने बोला था जल्दी मरेंगी, तो अभी तक मैं हूँ। वैसे मेरी उम्र 25 साल की थी, हमारी जन्म पत्री में भी लिखा हुआ था, बाबा ने भी बोला था 25 साल के बाद बच्ची तू 5 घंटा भी जी नहीं सकती है, लेकिन हो सकता है तेरी आयु योग बल से बढ़ जाए। तो मैंने बाबा को ये भी बोला था कि बाबा मैं योग ही नहीं करूँगी, मैंने मुझे मरने का पक्का निश्चय था। लेकिन फिर और मरने के बहुत सारे चांस मिले मुझे, मैं नदी में भी दो तीन बार डूबी तो भी नहीं मरी, बच गई। फिर एक बार कुएं में पड़ी तभी भी लगभग डेढ़ घंटे तक कुएं में रही थी। वो जैसे गोल कुएं होते हैं ना, उसमें अंजीर का झाड़ उगा हुआ था, उसकी डालियां उसके पानी में पड़ती थी जैसे। तो जैसे मैं ऊपर से पड़ी, किसी का धक्का लगा था, धक्का दे दिया था, पानी भर रही थी ऐसे से। किसी ने जल्दी करना के सीधे अंदर, और सब लोग भाग गए। तो जैसे अंदर मना नीचे एकदम गई, तो वैसे पानी का ये नियम होता है कि वो दो तीन बारी बाहर जरूर लगाता है और उसके बाद मरता व्यक्ति। तो जैसे नीचे जाकर के मैं ऊपर आई, तो ऊपर आते वो अंजीर का झाड़ पकड़ लिया। तो बस फिर तो मेरी आवाज किसी को नहीं, और डर इतनी गई थी कि आवाज भी नहीं लगाती होगी। और नवरात्रि के दिन थे, तो वहाँ से ही भाई और उसके फ्रेंड वगैरह सब जा रहे थे नवरात्रि देखने के लिए। तो उनको हुआ कि चलो ना पानी पीते जाएं। तो जब पानी पीने के लिए वो डोल ढूंढने लगे तो नहीं थी, तो किसी ने अंदर तो नहीं डाल दी। तो ऐसे जैसे देखा वैसे मैं पकड़ करके ऐसे देख रही थी। बोला कैलाश, मैंने हाँ। तो क्या हुआ? मैंने कहा बस मैं गिर गई। कैसे गिर गए? मैंने कहा बस ऐसे अपने आप ही गिर गई। तो फिर तो ये लोग भी घबरा गए, फटाफट कहाँ कहाँ से रस्सियां लाई, डोल लाए। तो डोल डाल करके फिर बोला कि कैलाश दोनों ही पाँव डोल के अंदर रखो। डोल में रख दिए। बोला अभी ये हाथ छोड़ करके और आप रस्सी पकड़ो। तो हिम्मत ही ना पड़े, मैं फिर से अंदर गिर जाऊंगी। तो बोला नहीं, तू एक हाथ चल, एक हाथ पकड़ लो रस्सी से। तो एक बड़ी मुश्किलातों से समझा समझा के एक हाथ से पकड़ी रस्सी और एक हाथ से वो झाड़। बोला अभी ये झाड़ छोड़ करके ये रस्सी पकड़ो। तो परंतु फिर वो रस्सी वो आगे ले आए और बोला पकड़ो, फिर ऐसे करके निकाला था। ऐसे मतलब बहुत सारे चांस मिले, वो क्या सांप चढ़ गए ये वो, लेकिन बाबा बचाता ही रहा, बचाता ही रहा, अभी तक चल रही हूँ। और बहुत बाबा मम्मा की मदद मिली मतलब। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा था कि बच्ची अगर पढ़ी लिखी होती तो बाबा का घर संभालती, लेकिन बाबा के जो बोल थे वैसे उस समय हमारी कोई इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा के वो बोल कोई साधारण बोल नहीं, लेकिन हमारे लिए एक जैसे वरदान थे। विदेश भी 91 में जाकर के आई थी, और बाबा ने अभी गांधीनगर रखा है। हमने देखा हमारे को सरला दीदी के पास में आई हूँ, लेकिन दीदी ने भी बहुत प्यार से कई बार कितनी भूले होती थी, काम होते थे नहीं होते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से दीदी ने सिखाया, आगे बढ़ाया। और दीदी ने ही जैसे गांधीनगर भेजा, बहुत अच्छी तरह बताया कि जो नहीं आवे तो मैं बैठी हूँ, बाबा है, सब कुछ बाबा करेगा, सिर्फ तेरे को रहना है, ऐसे कह करके बाबा ने और दीदी ने खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, सिखा रहे हैं और चल रहे हैं। ओम शांति। Thank you.